नमस्कार आदाब दोस्तों, अपने वादे के मुताबिक हम हाजिर हैं आपके मोबाइल वाणी पर क्वेश्चन मार्क कार्यक्रम लेकर, जहां आपको मिलेंगे आपके पढ़ाई लिखाई से जुड़े सारे अनसुलझे सवालों के जवाब, वो भी आपके चहेते शिक्षक के द्वारा। तो चलिए आज शुरू करते हैं सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र के साथ।
हाय बच्चों, मैं पप्पू राय, सहायक प्राध्यापक, पूर्वोत्तर महाविद्यालय सोनपुर सारण। आज हम लोग समाज शास्त्र के 46वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमें स्टोरी ऑफ डेमोक्रेसी, पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को पढ़ना है। लोकतंत्र, लोकतंत्र यानी जनता का तंत्र, डेमोक्रेसी जो ग्रीक शब्द डेमो यानी जनता तथा क्रेसिया यानी शासन, मतलब ऐसी शासन व्यवस्था जो सीधे जनता के द्वारा संचालित होती है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सभी जनता का मान बराबर होता है, यानी कि शासन व्यवस्था में कोई भी जनता यानी कि किसी भी वर्ग का, चाहे अमीर हो, गरीब हो, जाति, किसी भी जाति या धर्म का हो, शासन व्यवस्था में सबका अधिकार बराबर होता है, यानी कि मताधिकार का अधिकार सबको बराबर का होता है, यानी सबको मताधिकार का समान अधिकार होता है। अब लोकतांत्रिक दल, लोकतंत्र में सबको संवैधानिक दायरे में अपनी राजनीतिक पार्टी के गठन का हक है, जिसके माध्यम से राजनीतिक दल अपनी अपनी नीतियों के साथ जनता के बीच चुनाव के लिए जाते हैं। वर्तमान समय में विश्व के लगभग सभी देशों में प्रतिनिधात्मक प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था प्रचलित है। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन और प्रतिनिधियों के द्वारा शासन व्यवस्था के संचालन की संपूर्ण प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए राजनीतिक दलों का अस्तित्व अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त प्रजातंत्र शासन व्यवस्था लोकमंत्र पर आधारित होती है और राजनीतिक दल लोकमत के निर्माण तथा उसकी अभिव्यक्ति के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में केवल शासक दल का नहीं वरन विरोधी दल का भी समान महत्व होता है। विरोधी दल शासन करने वाले राजनीतिक दलों को मर्यादित तथा नियंत्रित रखने का काम करती है। इस प्रकार आधुनिक व्यवस्था के लिए, राजनीतिक जीवन के लिए दलीय संगठनों का बड़ा महत्व है और इसके बिना लोकतंत्र की सफलता संभव नहीं है। भारत में 1989 की जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29 के अनुसार सभी राजनीतिक दलों के लिए संविधान के प्रति समाजवाद, पंथ निरपेक्षता तथा लोकतंत्र के प्रति निष्ठा घोषित करना अनिवार्य है। राजनीतिक दलों के द्वारा चुनाव आयोग में पंजीकरण कराना आवश्यक है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों की 3 श्रेणियां बनाई हैं। प्रथम राष्ट्रीय दल, राज्य स्तरीय दल तथा अमान्यता प्राप्त पंजीकृत दल। चुनाव आयोग के द्वारा कोई पंजीकृत दल 3 विभिन्न राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों की कम से कम 2% सीटें हासिल की हो, कोई दल 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 6% मत पाए हों एवं लोकसभा में कम से कम 4 सीटें हासिल की हों, किसी भी दल को कम से कम 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो, इन दलों को हम राष्ट्रीय दल कहते हैं। चुनाव आयोग द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार राज्य स्तरीय दल की मान्यता चाहने वाली पार्टियों के लिए लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में डाले गए कुल वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त करना अनिवार्य है। अब दबाव समूह, वर्तमान समय में राजनीतिक दल सभी वर्गों के हितों का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते, इसी कारण दलीय पद्धति के विकास के साथ साथ अनेक दबाव गुटों या अथवा हित समूहों का भी विकास हुआ है। मायरन वीरन के अनुसार हित या दबाव गुटों से तात्पर्य है शासन के ढांचे के बाहर स्वैच्छिक रूप से संगठित ऐसे गुटों से होता है जो प्रशासनिक अधिकारियों की नामजदगी और नियुक्ति के विधि निर्माण और सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने में प्रयत्नशील रहते हैं। उदाहरण के लिए औद्योगिक, व्यवसायिक, वाणिज्यिक, श्रमिक और अन्य समुदायों के समूह विधि निर्माण और प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं, जिससे कि वे अपने हितों में कानून बनवा सके। ऐसे समूह को साधारण बोलचाल की भाषा में दबाव समूह भी कहते हैं। भारत में स्वतंत्रता के पहले भी अनेक दबाव समूह काम कर रहे थे, जैसे कि ब्रह्म समाज, धर्म समाज, सत्य साधक समाज, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी इत्यादि। भारत में क्रियाशील दबाव समूहों को आमंड तथा पावेल मॉडल के आधार पर 4 समूहों में विभाजित किया जा सकता है। संस्थानात्मक दबाव समूह, समुदायात्मक दबाव समूह, असमुदायात्मक दबाव समूह, प्रदर्शनात्मक दबाव समूह। अब डेमोक्रेटिक पॉलिटिक, लोकतांत्रिक राजनीति वह व्यवस्था है जिसमें जनता की सीधी भागीदारी होती है। भारत में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है। दुनिया के लगभग तमाम मुल्कों में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की जाती है। भारत में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ही संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था, भारत की राजनीति संघीय व्यवस्था पर आधारित है। सरकार वह तंत्र है जिसमें सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न इकाइयों में बट जाती है। भारत में संविधान के अनुच्छेद 239 के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, जो अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के द्वारा शासन करेगा। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका भी है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर सरकारें होती हैं, जिसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है, जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, फिर राज्य या प्रांतों की सरकारें होती हैं। सत्ता के इन दोनों स्तरों पर सरकारें स्वतंत्र होकर अपना काम करती है। यहां सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स दुनिया के अधिकांश भागों में होती है। धन्यवाद।
तो दोस्तों, ऐसे ही हर रोज क्वेश्चन मार्क कार्यक्रम में आप अलग अलग विषयों के शिक्षकों को सुन सकेंगे और नई नई जानकारियाँ ले सकेंगे। इतना ही नहीं, हर माह के अंत में शिक्षक आपसे पूछेंगे कुछ सवाल, जिसका सही जवाब देकर आप बन सकते हैं मोबाइल वाणी के स्टार स्टूडेंट। और अगर आपके मन में भी विषय से जुड़ा कोई सवाल हो तो बिना देर किए मोबाइल में दबाए नंबर 3 और रिकॉर्ड करे अपनी बात। और हाँ साथियों, इस कार्यक्रम को लाइक करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। नमस्कार।